Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। जब कभी भी आप भूकंप के समाचार सुनते हैं या फिर सुनामी की घटना हुई या पिछले वर्ष की बात लें तो केदार घाटी में जल प्रलय हुआ, इन सभी घटनाओं में आपने एक बात सामान्य रूप से देखी होगी कि जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं या गुरुद्वारे हैं, वो स्थान ज़्यादातर सुरक्षित रहते हैं। अन्य स्थान भले ही साफ हो जाएं, लेकिन इन स्थानों में सुरक्षित पाए जाते हैं ये स्थान। वास्तव में यहाँ पवित्र वाइब्रेशंस होते हैं जो इन स्थानों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि पवित्र वाइब्रेशन किसी भी स्थान को नष्ट नहीं होने देते, इसीलिए ऐसे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए कल मैं एक बात कह रहा था कि किसी महापुरुष ने कहा है कि तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करो तो पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। एक बार एक साइंटिस्ट से इसी विषय में मेरी बात हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है, तो वो कह रहे थे, वो भी बड़े स्पिरिचुअल थे, वो कह रहे थे कि इन स्थानों का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है और यहाँ के प्योर वाइब्रेशन ही इन स्थानों को प्रोटेक्ट करते हैं। जरा सोचें कि ऐसी प्योरिटी जब दीवारों को भी सुरक्षित रख सकती है, तो यदि हम पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करें तो हमारा ये जो शरीर है ये भी तो सुरक्षित रहेगा, इसके अंदर बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे, या यूं कहूं कि हम मानव से महामानव बनते चले जाएंगे। इसीलिए पवित्रता का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसकी चर्चा कल भी भ्राता जी कर रहे थे। आइए उस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
भ्राता जी, जब कभी साइंटिफिक रीजन देखते हैं प्योरिटी का या ब्रह्मचर्य का, तो सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि ये कितना कितना ज़्यादा हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक है। लेकिन विडंबना ही कहेंगे कि शायद मानवीय मन की कमजोरी है कि इसे धारण नहीं कर पा रहा है।
हाँ, केवल मानवीय मन की कमजोरी नहीं, लेकिन 100-200 साल से
जी
मनोवैज्ञानिकों ने जो बात एक वैज्ञानिक कह दे, वो चाहे ये कह दे आकाश नीचे है धरती ऊपर है, तो लोग मानने लगेंगे थोड़े दिन में कि ठीक कहा है होगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से और मेडिकल साइंस ने पवित्रता को महत्व नहीं दिया और लोगों को ये कहा कि ये काम भोग तो एक नेचुरल चीज़ है, खूब करो, मनुष्य के अंदर शक्तियाँ बनती हैं, क्योंकि पहले से हमारा दर्शन, हमारे वेद या हमारा धर्म, सभी धर्म इस बात को कहते थे कि ब्रह्मचर्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसका क्षय नहीं होना चाहिए
जी।
लेकिन मेडिकल साइंस और साइकोलॉजिस्ट ने ये बात जो बार बार कही, खासकर विदेशों में, फ्रॉयड जब से आया मनोवैज्ञानिक और उसने कहा ये नेचुरल प्रवृत्ति है, इससे तुम कमज़ोर भी नहीं होगे, इससे सब कुछ ठीक रहेगा, तो लोगों में प्रवृत्ति बढ़ गई भोग विलास की। और ये भोग विलास की प्रवृत्ति ऐसी है कि एक बार अगर ये बढ़ जाए फिर रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन अब जब लोगों को दिख रहा है, मेडिकल साइंस को भी, कि दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, बॉडी की वाइटल फोर्स, रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो उन्हें ये सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि पवित्रता की शक्ति सचमुच बहुत बड़ी है, क्योंकि जो पवित्र हैं उनको दवाई भी अच्छा काम करती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि आज के समय में उन्हें रोग नहीं होंगे, रोगों के तो बहुत सारे बाह्य कारण भी हैं, लेकिन वो काफ़ी सुरक्षित, उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा, दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं। तो अब पुनः जागृति हुई है और लोगों ने ये महसूस करना प्रारंभ किया कि पावर ऑफ प्योरिटी इज़ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इससे एनर्जी लेवल उस मनुष्य का या उस स्थान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऊँचा हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। परमात्मा ने भी इस समय आकर पवित्र बनने का ही संदेश और आदेश दिया है, तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो इसी को अपना जीवन मानकर इस पर चल रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले 5 साल में ये एक आध्यात्मिक क्रांति का रूप ले लेगी, क्योंकि क्रांति के लिए हमारे TV चैनल्स और न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा आजकल इस बारे में अवेयर हैं कि एक अच्छी बात का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। और फिर इस संसार का हर प्राणी कहीं ना कहीं पवित्र बनने की सोचेगा और संसार का रूप दूसरा होगा।
भ्रता जी, आपने फ्रायड की बात की या बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की बात की, जब विज्ञान कुछ कहता है तो बहुत सारे तर्क देता है और शायद उन तर्कों से व्यक्ति भी सहमत हो जाता है कि हाँ ये तर्क तो बिल्कुल सही सही हैं। तो क्या ऐसे तर्क उन्होंने दे दिए थे जिसके कारण व्यक्ति सहमत हो गया उस चीज को और इस चीज को उन्होंने एक भूख की तरह स्वीकार कर लिया?
देखिए, एक मनोवैज्ञानिक जब कोई रिसर्च करता है तो मान लो उसने 1000 लोगों पे रिसर्च की, तब में उसने पाया कि नेचुरल भूख है, ये प्रवृत्ति है, तो एक सिद्धांत बना दिया ये तो नेचुरल भूख है, इसको रोका नहीं जाना चाहिए, इसको तृप्त किया जाना चाहिए तभी ठीक रहेगा, नहीं तो मनुष्य भूखा रहेगा, नहीं तो उसका विस्फोट होगा। किसी भी रिसर्च का केवल आधार ये होता है, लेकिन मैं सदैव लोगों को कहता हूँ, मनोवैज्ञानिकों को ही कहता हूँ, फ्रायड मान लो अब से 350 साल या 400 साल पहले थे, उस टाइम के मनुष्यों के मन की स्थिति का उन्होंने आंकलन किया था, लेकिन उन्हें क्या पता, एक मनुष्य को चाहे वो कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, उसकी बुद्धि की एक सीमा है और उससे बाहर वो नहीं सोच सकता, बल्कि वैज्ञानिकों का केवल एक सब्जेक्ट होता है छोटा सा, उसके बाहर भी वो नहीं सोच सकते। इसलिए किसी वैज्ञानिक की कोई रिसर्च परफेक्ट होगी ये मानना परफेक्टली रॉन्ग है। तो मैं उनसे पूछा करता था, मेरे पास बहुत लोग आते थे विदेशों के, बहुत हमारे यहाँ जर्मन से तो बहुत साइकोलॉजिस्ट ज्ञान लिया, ब्रह्मा कुमार बने, ब्रह्मा कुमारियाँ बनी, मेरे से उनकी चर्चा होती थी जब वो पहली बार यहाँ आए, कि क्या फ्रायड को पता था कि उससे 500 साल पहले मनुष्य की मनोस्थिति कैसी थी, फिर उससे 500 साल पहले और अब से 5000 साल पहले मनुष्य का मन कैसा रहेगा, जबकि हम ये देखते आ रहे हैं कि पिछले 50 साल में भी मॉरल वैल्यूज में कितना गिरावट हुई है, उससे 50 साल में और हुई होगी, उससे पहले 100 साल में और धीमी रही होगी, तो 5000 साल पहले मनुष्य की मानसिक स्थिति काफ़ी प्योर, उसका जीवन बहुत सुधरा हुआ, इन वासनाओं से ऊपर रहा होगा, इस बात पर भी विचार करो। और अगर आप कुछ अच्छे लोगों का सर्वे आज भी करें तो आप पाएंगे कि प्योरिटी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरह से उनकी रिसर्च होती है। और अब भगवान ने एक सीधी सी बात कर दी कि यदि ये भूख भी थी जिसको शास्त्रों में उत्तेजना कहा गया, वासनात्मक उत्तेजना, इसको उन्होंने भूख का नाम दिया, ये कलयुग का इफेक्ट है। जब आत्मा मूल रूप से प्योर होती है, जब उसे सेल्फ के बारे में उसकी जो मूल स्थिति है, जो ओरिजिनल उसका लेवल ऑफ प्योरिटी है, उसका ज्ञान मिलता है, तो पता चलता है प्योरिटी तो कभी परफेक्ट थी। फिर से अगर हम उसको उस लेवल पे ले जाएंगे, सचमुच प्रकृति बदलेगी, मनुष्य भी बदलेगा।
कहा जाए कि वो ज्ञान जो दिया गया वो अपूर्ण ज्ञान था या तत्कालीन लोगों पे रिसर्च किया गया था, उससे पहले भी लोगों की मानसिक स्थिति बहुत उच्च और श्रेष्ठ रही होगी और इसे बदला भी जा सकता है क्योंकि विज्ञान तो परिवर्तनशील है। एक बात विशेष करके कही जाती है व्रता जी, कि यदि हम काम भोग की इच्छा हो रही हो और उसे हम दबा रहे हों तो ये शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती है या फिर मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, ये बात कही जाती है। इस बात में कितना दम है, क्या ऐसा सही है या ये बात मिथ्या है?
हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डिग्री उन्होंने ली MD की, इसमें मेरी उनसे बात होती रहती है जब जब मिलना होता है। तो मैं जब उनसे इस बारे में चर्चा की कि फ्रायड को जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी 50 साल की आयु से पहले उसने जो लिखा है और 50 साल की आयु के बाद जो लिखा, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 50 साल के पहले वो भी युवक थे और अपनी स्थिति वो देखते होंगे, और 50 साल के बाद उनकी भी मानसिक स्थिति बदल गई, तब उनके विचार कुछ और हो गए थे। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि इसी पावर को यदि चैनलाइज कर दिया जाए तो ये पावर बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, बड़े सुंदर कार्य करने लगती है, लेकिन उसको चैनलाइज करना, उसका रूपांतरण करना, ये लोगों को आता नहीं है। ये बात उसने 50 साल की आयु के बाद कही। तो वास्तव में आयुर्वेद तो पहले से ही कहता है स्थूल शक्तियां शरीर में बनती हैं, जिसको काम शक्ति कहते हैं, ये सूक्ष्म रूप भी लेती जाती हैं, और यदि इनको ऊर्ध्वगामी कर दिया जाए तो ये यहाँ तक पहुंचकर, आज्ञा चक्र तक पहुंचकर और फिर सहस्रार तक पहुंचकर ओज का रूप, तेज का रूप ले लेती हैं, यानी फिजिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू स्पिरिचुअल पावर। और तब ये ब्रेन को चली जाती हैं और ब्रेन को डिविनाइज कर देती हैं, उसका दिव्यीकरण कर देती हैं। तो यही बात फ्रायड ने अपनी 50 साल की आयु के बाद भी अपनी लैंग्वेज में कही, और ये बात भारत में वेद और आयुर्वेद और जो हमारी योगिक क्रियाएं हैं जिसमें सातों चक्रों का वर्णन है, वो इस बात को पहले से ही कहते रहे। जैसे जैसे हमारा योग अभ्यास बढ़ता गया, हमें प्योरिटी बिल्कुल नेचुरल होती गई, सहज होती गई। उसकी जो उत्तेजना होती थी, जो भूख थी, वो थी नहीं पहले से ही, मुझे तो पहले से ही नहीं थी, पर और जो हमारे साथी युवक हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा था, वो भी इस बात के अनुभवी हैं और बताते हैं कि उनकी प्योरिटी की स्थिति नेचुरल होती गई लेकिन योग अभ्यास के बाद। और ऐसे युवक जो आजकल आ रहे हैं जो योग अभ्यास नहीं कर पाते, उनकी स्थिति वो नेचुरल नहीं होती। तो राजयोग के मार्ग पे चलने वाले जो अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, उनके माइंड का अगर सर्वे किया जाए, इन्वेस्टिगेशन उस पर हो, तो ये पता चलेगा कि प्योरिटी की जो पावर है उसको अगर हम चैनलाइज कर दें तो वही स्पिरिचुअल पावर बन जाती है। वो हमारे ब्रेन को डिविनाइज कर देती है, हमारे विचारों को महान कर देती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ा देती है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं, हमारे भारत में सब लोग जानते हैं 4 आश्रमों का वर्णन रहा है, और उसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें मनुष्य को विद्या अर्जन करना है। तो एक विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक था, क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य की शक्ति थी ये पढ़ाई में खर्च होती थी। देखिए पढ़ाई में उनका लग रहा है ब्रेन, ब्रेन को चाहिए अब एनर्जी, ब्लड भी चाहता है, मेडिकल साइंस ये कहेगी ब्लड की जरूरत है, लेकिन उसको एनर्जी बहुत चाहिए जो एक सूक्ष्म चीज है, और वो एनर्जी मिलती थी उसको ब्रह्मचर्य से, जो ऊर्ध्वगामी होकर उसके ब्रेन को चली जाती थी। तो एक विद्यार्थी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाकर विद्वान बनकर निकलता था, अब वो चीज समाप्त हो गई। क्यों विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, क्यों उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी नहीं रहती, क्यों वो ये महसूस करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कम सफलता मिलती है, उसका एक ही कारण है प्योरिटी। अगर वो सेलिबेसी को अपना लें तो सेलिबेसी की शक्ति उनके ब्रेन को एम्पावर करेगी, उनको सटिल एनर्जी देगी, और देन दे विल एंजॉय देयर स्टडी। तो इस तरह इसको हमें समझना चाहिए।
बिल्कुल, एक विशेष बात रहता है जी, पहले भी मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूँ लेकिन फिर भी ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कईयों का ये प्रश्न होता है कि यदि संसार को पवित्र ही रखना था परमात्मा को, जैसे लगातार आप कहते हैं कि अब परमात्मा कह रहे हैं कि पवित्र बनो क्योंकि पवित्र दुनिया लानी है, तो ये प्रश्न होता है कि यदि भगवान को पवित्र ही रखना था तो एक लिंगी ही क्यों नहीं बना दिया सभी को, ये यदि लिंग में परिवर्तन है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो ये तो नेचुरल है कि विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है और इसी से संसार चलता है। तो यदि भगवान को ये पवित्र ही रखनी थी सृष्टि तो फिर एक लिंग ही बनाते,
नहीं फिर तो सृष्टि आगे ही न बढ़ती ना, पहले जन्म के बाद ही सब कुछ नष्ट हो जाता, संतान उत्पत्ति न होती। वेदों आदि में भी इसकी चर्चा है कि सृष्टि अमैथुनी थी, मतलब नॉन सेक्सुअल, सेक्सुअल संतान उत्पत्ति का सिस्टम था ही नहीं, ये बाद में हुआ जब उसको बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा। तो वास्तव में ऐसा तो संभव ही नहीं था कि एक लिंग की सृष्टि होती तब तो ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ती, संतान उत्पत्ति तो इसका क्रम है। और इसमें एक नियम भी है, सत्युग के बाद त्रेता आएगा, थोड़ी सी गिरावट, त्रेता के बाद द्वापुर आएगा और गिरावट, द्वापुर के बाद कलयुग आएगा ज्यादा गिरावट, फिर जैसे अंधकार हो जाता है उसके बाद प्रकाश आता है, फिर सत्युग आता है, ये क्रम ही ऐसा है, इस क्रम को नहीं बदला जा सकता।
मतलब ये दोनों का होना भी जरूरी है,
सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है।
बिल्कुल, मतलब ये शारीरिक आकर्षण, क्योंकि परिवर्तन जैसे शुरुआत में एक शुद्ध स्थिति थी भ्राता जी, क्या वही स्थिति बाद में भी नहीं रह सकती?
ये नहीं रह सकती थी, दैहिक आकर्षण तो सत्युग में भी था लेकिन उनमें विकारों का समावेश नहीं था। देखिए प्यार होना, चाहे शरीरों से प्यार होना, ये मनुष्य की नेचुरल प्रवृत्ति है, लेकिन उसमें विकार जब प्रवेश कर गए तब गिरावट आई, नहीं अन्यथा प्यार और आकर्षण ये सृष्टि के आदि से ही चलता आता है, लेकिन उसमें बहुत प्योरिटी और मर्यादाएं थी।
क्या सहज विधियां और युक्तियां हो सकती हैं, क्योंकि हम बात वहां से हमारी चली थी कि हमें परमात्मा मिलन करना है, ईश्वर से मिलना है, तो हमें पवित्रता और ब्रह्मचर्य की जरूरत है, क्या सहज युक्तियां हो सकती हैं, विधियां हो सकती हैं, जिससे ये ब्रह्मचर्य पवित्रता मेरे लिए बहुत सहज हो जाए।
ये बिल्कुल सत्य है कि जिसे परमात्म मिलन का सुख लेना हो उसे पवित्र बनना ही होगा। कल इसकी चर्चा हो रही थी कि हमारे यहाँ कौन लोग आते हैं। अगर हमारे यहाँ परमात्म मिलन के प्रोग्राम में ऐसे लोग भी आ जाएं जिन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया, वो खुश तो हो जाएंगे कि हम अपनी बहनों को धोखा दे के यहाँ आ गए हैं, झूठ बोल के आ गए, लेकिन उनको प्रभु मिलन जैसा कुछ अनुभव नहीं होगा। वो अच्छा अच्छा कह के वापिस चले जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा था, वाह कितना अच्छा वातावरण था, लेकिन उनको सुखद फीलिंग हो, अतिन्द्रिय सुख उन्हें भासने लगे, इससे वो वंचित रह जाएंगे। तो पवित्र बनना बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कल कहा था, अब एक समय आ रहा है, अब मैं तो ऐसा कहूँगा कि एक स्पिरिचुअल क्रांति या रिवोल्यूशन ऑफ प्योरिटी इस धरा पर होने जा रहा है, जिसमें सभी मनुष्यों को मनोविकारों से वैराग्य होगा और सभी पवित्रता का पथ अपनाएंगे। जैसे रात दिन का एक 24 घंटे का सर्किल है, हम ये जानते हैं
जी।
अभी सवेरे हुआ, मान लो सूरज 6 बजे निकलने वाला है, अभी 6 बजने से पहले मनुष्य की वही स्थिति होगी जो रोज होती थी, उसके मन की स्थिति, क्योंकि ये जो साइक्लिक ऑर्डर में दिन रात का चक्र चल रहा है, उसी ऑर्डर में मनुष्य के विचारों का, उसकी भावनाओं का चक्र भी चलता रहता है। तो उसको उठने की इच्छा होगी, बहुत लोगों को उठने की इच्छा होगी जो सो गए हैं। सब कहेंगे भाई सूरज निकलने वाला है, चलो उठो, अब अपने काम पर चलना है। कोई कहेगा भगवान को याद करो, उसका भजन कीर्तन करो। तो जो फीलिंग्स रोज सवेरे 6 बजे होती थी, वही कल फिर होगी, वही परसों भी होगी। ठीक यही इस वर्ल्ड साइकिल का नियम है, ये 5000 साल का साइक्लिक ऑर्डर है। और जब मनुष्य कलयुग के अंत में आ जाता है, उसके बाद सतयुग आना है। देखो बहुत मिलन का समय हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर रह गया, बस ये खेल समाप्त हो और वो शुरू हो, थोड़े से सालों का जब अंतर होता है, तो हर मनुष्य की जो ओरिजिनल स्थिति है, जो सतयुग के शुरू की है, अब कलयुग का अंत और सतयुग का शुरू बिल्कुल समीप जुड़ने लगे हैं, तो सतयुग के शुरू की स्थिति कलयुग के अंत की स्थिति वालों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। और क्योंकि उनके मूल संस्कार सतयुग आदि के प्योर हैं, तो उनमें प्योर बनने की इच्छा हो जाएगी, जैसे सवेरे उठते जागने की इच्छा हो जाती है, उनकी प्योरिटी भी जगने लगेगी। तो अब समय आ रहा है जब ये स्थिति बनने जा रही है। रही बात ये कि पवित्रता को हम कैसे अपनाएं, कैसे इसको धारण करें, ये कार्य परमात्म कार्य चल रहा है। हमने चारों ओर से अच्छी तरह से इसका आंकलन कर लिया है, ये न कल्पना है, न किसी का अनुमान है, न किसी के सोच चिंतन है, सचमुच परमात्म कार्य चल रहा है। और भगवान स्वयं मनुष्य आत्माओं को, जो कि उसकी संतान है, घर ले जाने के लिए आया है, जहां से हम सब आए थे, और वो स्वयं सबको पवित्रता का न केवल संदेश दे रहे हैं, लेकिन पवित्र बनने की शक्ति भी दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मनुष्य केवल मन में एक श्रेष्ठ इच्छा उत्पन्न करेगा, मुझे पवित्र बनना है, परमात्म शक्तियों की मदद उसको मिलने लगती है और वो पवित्र होने लगते हैं। तो पहला कदम यहाँ से शुरू करें कि हम एक इच्छा करें कि जब हम थे ही पवित्र, तो पुनः हमें पवित्र बनना है। दूसरा, अपने परम पिता से नाता जोड़ लें, वो मेरा पिता है, वो मेरा है, इस फीलिंग में आए, तो उसका सब कुछ मेरा है। देखिए पिता के बहुत सारे संस्कार पुत्र में होते हैं, वो पवित्रता का सागर है, वो पतित पावन है, मेरे अंदर भी प्योर संस्कार हैं। प्योर संस्कार न होते तो हर व्यक्ति इम्प्योरिटी को रिजेक्ट क्यों करता, क्रोध आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या होती है, काम वासना अति होती है, तो मनुष्य को ग्लानि होती है ना, ये नहीं। तो प्योर संस्कार ही हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, इसे हम स्वीकार कर लें, उससे नाता जोड़ लें, तो उसकी मदद हमें बहुत मिलने लगेगी। यहाँ से शुरू होगा प्योरिटी का पावन पथ।
बिल्कुल, तो यहाँ से शुरुआत हम करें। राता जी, कितना वक्त आपके अनुभव से लग जाता है किसी को संपूर्ण पवित्र होने में? क्योंकि ये जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि एक मानसिक जो द्वंद है वो शायद बहुत ज्यादा परेशान करता है। आपके अनुभव से कितना वक्त लग जाता है इस पावनता की स्थिति को पाने में?
मेरा अपना अनुभव तो अलग है, क्योंकि मेरे अपने संस्कार बहुत प्योर थे, मुझे तो वक्त लगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सारी माताएं आती हैं, मैं पूछ लेता हूँ बहुतों से, आपकी प्योरिटी की धारणा कैसी है? कहती बिल्कुल अच्छी, जिस दिन से हमने छोड़ा हमने वो संकल्प ही समाप्त कर दिया, बिल्कुल हम स्वच्छ हैं, हमारे अंदर उत्तेजना भी नहीं होती है, हम अपनी प्योरिटी से बहुत संतुष्ट हैं। तो किसके संस्कार कैसे रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा किसको कितना समय लगता है। कोई एक सप्ताह में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कोई 3 मास में करते हैं, कोई 6 मास में करते हैं, कोई साल में करते हैं, कोई तोड़ते हैं, कोई इसको स्थिर रखते हैं। हमारे यहाँ तोड़ने वाले भी करोड़ों होंगे जिन्होंने फिर से शुरू किया, करोड़ों। लेकिन जो स्टेबल रहे वो हैं कुछ लाख, जो बिल्कुल स्टेबल रहे, ऐसी 5-7-10 लाख आत्माएं जो पवित्रता में बहुत नेचुरल हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं, वो सचमुच इस संसार के लिए बहुत बड़ी ब्यूटी हैं, इस संसार का सहारा हैं, और वो हमारे पास हैं। बाकी करोड़ों हैं जो तोड़ते हैं और फिर धारण करते हैं, उनकी प्योरिटी का महत्व है, लेकिन उनकी प्योरिटी संसार के लिए बहुत बड़ा बल नहीं बनती है।
यदि आप सावधानी देना चाहें भ्राता जी, जैसे कोई डॉक्टर सावधानी भी देता है कि भाई यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो इन इन चीजों का सेवन मत करो, यदि हमें अपनी पवित्रता को नेचुरल करना है या इस पथ पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, किन बातों से सावधान होना चाहिए
हमारी पवित्रता को थोड़ी सी? पहली चीज, टीवी आदि पे जो डांस आदि एड में आते हैं वो सब नहीं। दूसरा, फिल्में, जो कलयुगी फिल्में हैं जिसमें काम वासना के अलावा कुछ लक्ष्य लोगों का नहीं है, उनसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया जाए, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमें वो सब देखना ही नहीं है। और आज के समय में जिसका बहुत प्रकोप हो रहा है, जिसके प्रचलन से हमारा समाज या हमारे युवक बहुत बड़ी गिरावट में आते जा रहे हैं, वो है इंटरनेट। उस पर भी एक सीमित जितना हमारे लिए यूजफुल है
जी,
चाहे वो स्टडी के लिए यूजफुल है, चाहे हम व्यक्तिगत जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, तो इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ में कि भोजन बनाने वाले के विचारों का, उसकी भावनाओं का, उसके संस्कारों का, उसकी संपूर्ण स्थिति का प्रभाव भोजन पर आ जाता है, और जो मनुष्य उस भोजन को खाएगा उस वो सीधा प्रभावित होगा उन सब चीजों से। इसलिए जो राजयोग के पथ पर चल रहे हैं या जिन्हें जीवन में कुछ अच्छी धारणाएं, अच्छे आचरण अपनाने हैं, उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हमारे यहाँ इसलिए ऐसी कुछ साहूकार परिवारों की माताएं भी जो आई, जिनके घरों में अब तक नौकर भोजन बनाते थे, ज्ञान योग के पथ पर चलते ही उन्होंने अपना भोजन अपने हाथ से बनाना प्रारंभ कर दिया, ताकि उनकी बुद्धि की एकाग्रता बनी रहे।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आपने रखी हैं भ्राता जी, और इन पे मैं आने ही वाला था कि पवित्र भोजन का भी शायद हमारी पवित्रता से बड़ा गहरा कनेक्शन है, और सत्संग की भी आप बात कर रहे थे जो कि वास्तव में एक परमात्म मिलन के लिए एक आधारभूत चीज़ है। इन दोनों पे भी आपसे प्रकाश लेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है, आपकी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं एक ब्रह्मा कुमारी बहन का उद्बोधन सुन रहा था। चूंकि पवित्रता और ब्रह्मचर्य के विषय पे मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि है, तो एक बहुत सुंदर वो एग्जाम्पल दे रही थी। वो कह रही थी कि हम में से हर एक संसार में जितने भी लोग हैं, वो जब ईश्वर के सामने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मात पिता हो, हर एक यही कहता है। तो यदि परमात्मा हमारे माता पिता हैं तो हमारा आपस में रिश्ता क्या हुआ? वो कह रही थी कि यदि परमात्मा माता पिता हैं तब तो या तो हम भाई भाई हैं या तो हम भाई बहन हैं, और भाई बहन का कभी भी आपस में कोई भी एक अशुद्ध दृष्टि नहीं होती, उनका आपस में बहुत ही शुद्ध और स्नेह भरा जो संबंध है वो होता है। तो ये वो ये भी एक एग्जाम्पल दे रही थी कि बहन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन भाई की दृष्टि कभी भी उसके लिए नकारात्मक नहीं होती, चाहे वो मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो, और भाई भी कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन बहन की दृष्टि उसके लिए कभी गंदी नहीं होती। तो वो ये एग्जाम्पल दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि संसार के सभी लोगों के लिए यदि हमारी ये दृष्टि बन जाती है कि हम आपस में भाई बहन हैं, तो वास्तव में पवित्रता की सरिता का बहना सहज हो जाएगा, या जिस पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बात भ्राता जी लगातार कर रहे हैं वो हमारे लिए अपनाना बहुत सहज हो जाएगा। और ये जो आजकल हम केसेस सुनते हैं कि यहाँ बलात्कार की घटना हो रही है, यहाँ ये घटना हो रही है, तो ये घटना तो सुनने में ही नहीं आएंगे। तो आए मिल करके पवित्रता की सरिता बहें। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखने वाली चीज़ है, जिस चीज़ को इतना महत्व दिया गया है शास्त्रों में, महापुरुषों के द्वारा भी और स्वयं परमात्मा के द्वारा भी, उसे हम अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शामिल करके देखें और देखें कि किस प्रकार का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक परिवर्तन होता है और समस्याएं दूर होती हैं या नहीं होती। लाखों लोग अनुभव कर रहे हैं, क्यों ना हम सब भी इसमें शामिल हो जाएं। नमस्कार।